नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। 50 से अधिक लोग राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए पूर्व न्यायमूर्ति अरुणा जदीसन के नेतृत्व में 1 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। ये घटना तमिलगा वेट्री कड़गम के संस्थापक और अभिनेता विजय के रोड शो के दौरान हुई। अभिनेता विजय ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि वे असहनीय पीड़ा और दुख में हैं। राज्य के विपक्षी नेता ई पलानीसामी घटना की जानकारी लेने के लिए करूर पहुंच गए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से करूर भगदड़ की घटना की वजह और इसके बाद किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों का विवरण देने को कहा है। अधिकारियों ने प्रबंधन में हुई खामियों की जांच शुरू कर दी है, जिसके कारण ये जानलेवा घटना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार के एक बड़े प्रयास के तहत समूचे भारत में 97,500 से अधिक नए 4G मोबाइल टावरों का उद्घाटन किया है। इनमें 92,600 टावर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से लैस हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में झारसुगुड़ा में इस सेवा की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत 2G, 3G और 4G तकनीकों के मामले में पिछड़ गया था, लेकिन BSNL के स्वदेश में विकसित 4G नेटवर्क से अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो अपना दूर संचार नेटवर्क बनाने में सक्षम हैं।
टेलीकॉम सेक्टर की ये जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पटना में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित चामुंडा देवी मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत का एक पड़ोसी देश है जो वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अपने संबोधन में डॉ जयशंकर ने कहा कि दशकों से कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों के पीछे भी उसी एक देश का हाथ रहा है। उन्होंने इस वर्ष अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पूरे विश्व के लिए आतंकवाद एक साझा खतरा है और इसके लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। डॉ जयशंकर ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास की 3 प्रमुख अवधारणाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भारतवासियों की ओर से नमस्कार के साथ की। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ब्राजील और भारत के स्थायी सीट के आवेदन का समर्थन करता है। इसके साथ ही रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एकमात्र स्थायी सदस्य बन गया है जिसने स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया है। फुटबॉल में भारत ने पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को 4-1 से हराकर 7वीं बार सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।